क्षमा है मंत्र बड़ा।
धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा।
धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा।
धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा।
मिट जाए सब झगड़े जो मन में आए क्षमा।
मिट जाए सब झगड़े जो मन में आए क्षमा। धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा। धर्म क्षमा सर्वोत्तम।
तन के धन के अहम में फंस कर,
तन के धन के अहम में फंस कर,
रह गए कितने बैरी बन कर,
रह गए कितने बैरी बन कर,
तन के धन के अहम में फंस कर,
तन के धन के अहम में फंस कर,
रह गए कितने बैरी बन कर,
रह गए कितने बैरी बन कर।
मांग क्षमा आपस में बैर का बंद कटा।
धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा।
मिट जाए सब झगड़े जो मन में आए क्षमा। क्रोध है आता बुद्धि हनता,
क्रोध है आता बुद्धि हनता,
भाव क्षमा चित्त शांत है करता,
भाव क्षमा चित्त शांत है करता।
क्रोध है आता बुद्धि हनता,
क्रोध है आता बुद्धि हनता,
भाव क्षमा चित्त शांत है करता,
भाव क्षमा चित्त शांत है करता।
करके क्षमा कितनों ने धर्म पद को पाया।
धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा।
मिट जाए सब झगड़े जो मन में आए क्षमा।
मिट जाए सब झगड़े
धर्म क्षमा सर्वोत्तम, क्षमा है मंत्र बड़ा। जिसके मन में क्षमा करने की क्षमता, जिसको क्षमा प्राप्त करने की क्षमता, वही उसी का कल्याण। मुनिराज दशलक्षण पर्व पर दशलक्षण धर्मों में पहला धर्म बताते हैं उत्तम क्षमा। आज उत्तम क्षमा के वशीभूत एक कथा सुनाई जाती है। एक थे राजा सुधर्म, उनका एक था नगर, नगर का बड़ा प्यारा नाम वर नगर। वर नगर जिसे अपभ्रंश भाषा में कहेंगे बड़ नगर। वो वर नगर, उसके महामंत्री सिंहबल, राजा सुधर्म दिग्ग विजय करके वापस लौट रहे थे, न जाने कितने देश देशांतरों को, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, न जाने कितने स्थानों के राजे महाराजाओं को, मुकुटबंध राजाओं को अपने अधीन बनाते हुए अपने नगर पर वापस आ रहे थे। वर नगर से 50 कोस की दूरी पर संध्याकालीन सूर्य धीरे धीरे अस्त हो गया, रात्रि का प्रहर आया और वहीं पर पड़ाव डाल दिया गया। अकस्मात राजा सुधर्म के मन में एक प्रश्न उठा, अंतर की आत्मा अंतर मन से प्रश्न आया कि मैंने चहुं दिशा में बड़े बड़े राजे महाराजाओं को जीतकर इतना धन एकत्र किया है, इतने राजे महाराजाओं को अपना दास बनाया है, अंत में मिला क्या? वही सिंहासन, वही राजमुकुट और वही हीरे पन्ने मणि मोती। ये धन क्या मेरे साथ जाएगा? ये धन क्या मैं साथ ले जाऊंगा? ये प्रश्न बार बार मन में उठ रहा था, इसका उत्तर मिलता था, धन धरा का है धरा में ही धरा रह जाएगा, धन धरा का है धरा में ही धरा रह जाएगा। राजा ने अपने महामंत्री सिंहबल को बुलाया, कहा आज मन में आया है कि इतने देश देशांतरों को जीतने के बाद मिला क्या? सिंहबल समझा नहीं। राजा ने कहा मैंने प्रण किया है, मैंने व्रत लिया है कि आज से मैं किसी पर भी, चाहे वो कोई मेरा शत्रु है, चाहे वो कोई मेरे निकट में है, चाहे मेरे मन में क्रोध कसाय भी आए, मैं किसी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अहिंसा व्रत का पालन करूंगा। सिंहबल डर गया, कहने लगा प्रभु जो राजा अगर ये शपथ ले लेता है कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लोग उसे कायर समझकर उस पर आक्रमण कर देते हैं, ऐसे विचार मन में मत लाइए। मगर राजा ने कहा कि नहीं, ये विचार करते करते प्रातः काल की पौ फट गई, सुबह होने लगी और सुबह घोड़ों पर काठी लाद दी गई, हाथियों पर सामान लाद दिए गए, वर नगर की ओर जीता हुआ काफिला बढ़ रहा था अपने नगर की ओर। अंत गोत्वा वर नगर में राजा सुधर्म वापस आ गए। सामने दिखाई देता था वर नगर का वो गढ़, वो किला और उस किले का प्रवेश द्वार, वो प्रवेश द्वार जो बहुत दूर से जिसके ऊपर पीली पीली ध्वजा लहरा रही थी, जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह नजर आ रहा था, उसे देखकर सब प्रसन्न थे कि आज कितने दिनों बाद वर नगर का राजा वापस लौटा है अपने किले में, अपने नगर में। और जिस समय राजा सुधर्म अपने प्रवेश द्वार के पास आया, प्रवेश द्वार के पास आते ही पांव रखा, प्रवेश द्वार धड़धड़ाकर गिर गया, प्रवेश द्वार धड़धड़ाकर गिर गया, प्रवेश द्वार धड़धड़ाकर गिर गया, गिर गया,
दरवाजा टूटा। अब शकुन मंत्रियों ने मंत्रणा की, नगर में चर्चा हुई, क्षेत्र में जहाँ राजा के आने की प्रसन्नता थी, एक शंका, एक कौतूहल कि पांव रखते ही दरवाजा क्यों टूटा। राजा ने कहा, मैंने न जाने मैंने कितने दुष्कर्म किए हैं जिसकी वजह से मेरा नगर मुझे स्वीकार नहीं करता। मंत्रियों ने कहा, आप चिंता न करें, शिल्पकारों के द्वारा हम दोबारा नगर को बनवा देंगे, दोबारा इस प्रवेश द्वार को फिर सजवा देंगे। दोबारा बना, मगर वही पुनरावृत्ति फिर हुई, वो दरवाजा फिर टूट कर गिर गया। सोचा गया, विचारा गया, किसी ने सलाह दी, नगर वर नगर के किनारे एक दरिया बहता है, नदी उस पर रहती है तंत्र मंत्र बोलने वालों की टोली। वो बैताल यक्ष कहा, उन सब ने मिलकर एक बात कही, इस द्वार पर कोई यक्षिणी रहती है और वो यक्षिणी रुष्ट है राजा से। जितनी बार भी राजा पांव रखेगा इस द्वार पर, उतनी ही बार ये द्वार टूट टूट कर गिर जाएगा। किसी ने बात मानी, किसी ने ना मानी। ये मिथ्यात की चर्चाएं, ये झूठ की चर्चाएं, कोई मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था। मगर मंत्री सिंहबल, उसने जाकर राजा से कहा कि कोई यक्षिणी दरवाजे पर रहती है, किले के प्रवेश द्वार पर रहती है, वो रुष्ट है आपसे, वो भेंट मांगती है। राजा ने कहा, कैसी भेंट? वो बलि चाहती है। किसकी बलि? किसी पशु की नहीं, नरबलि। नरबलि? कैसी नरबलि? और वो भी बालक की, 12 वर्ष के बालक की। राजा बिगड़ उठे। सुधर्म राजा कहने लगे, तुम बालक की बलि की बात करते हो? मैंने तो निश्चित किया है कि अपने शत्रु पर भी तलवार ना उठाऊंगा। मुझे ये नगर नहीं चाहिए, मुझे ये किला नहीं चाहिए, मुझे ये प्रवेश द्वार नहीं चाहिए, मुझे ये महल दुमहले नहीं चाहिए। मैं किसी के अबोध बालक की हत्या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं किसी अबोध बालक की हत्या। मंत्री बोला, राजन, आपको ये नगर नहीं चाहिए, आपको ये देश नहीं चाहिए, मगर हमें आप जैसा राजा चाहिए। ना माने राजा और सिंहबल मंत्री इस चक्कर में लग गया कि कैसे राजा को मनाए। जो बात सीधी ना निकले उसे राजमहलों में कूटनीतियों से निकाला जाता है। सिंहबल मंत्री रानी के पास गया, महारानी और कोई तरीका नहीं है, राजा खड़े हैं बाहर, नगर के बाहर डेरे तंबू डाले हुए, अपनी सेना को लिए हुए नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, वैराग उत्पन्न हो गया है, आपसे भी विमुख है, क्योंकि अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, जब भी दरवाजे पर पांव रखेंगे द्वार गिर जाएगा। महारानी कहने लगी, क्या करूं फिर? सिंहबल कहने लगे, यक्षिणी को प्रसन्न करना होगा, और प्रसन्नता तब होगी कि उसे बलि दी जाए, और वो भी नर बलि, बालक की बलि। महारानी कहने लगी कि किसी के अबोध बालक की, कि ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, अपने स्वार्थ हित नारियां, बहुत सी नारियां आगा पीछा नहीं सोचती। महारानी ने न जाने किस कारण आज्ञा दे दी, पति विरह में, पति वियोग में आज्ञा का पालन कराने के लिए, अपने पति से मिलन के लिए कह दिया कि कर दो बलि, मगर अपना बालक देगा कौन? तब सिंहबल बोला, इसकी चिंता ना करो महारानी, एक सोने की मूर्ति बनाऊंगा, सवा मन सोने की मूर्ति बनाऊंगा, उस मूर्ति को बाजार बाजार ले जाऊंगा और ले जाकर शोर मचाऊंगा। जो इस मूर्ति को ले लेगा, जो सवा मन सोने को लेगा, वो अपना बालक देगा। रानी कहने लगी, कौन देगा अपना बालक? मंत्री कहने लगा, कोई ना कोई तो देगा ही, कोई ना कोई तो देगा ही। फिर शिल्पकारों ने किया कमाल, एक मूर्ति स्वर्ण की बनाई, जिसकी नहीं है कोई मिसाल। शिल्पकारों ने किया कमाल, जीवन का मूल्य लगाने सोना आज ले चले लोग, सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, बेटा दे दो, चहुं दिशा में मच गया शोर, किसी ने नहीं लिया। सोने की मूर्ति को खरीदने वाला नहीं था, कौन देगा अपना बेटा, और वो भी 12 साल का अपना लखते जिगर इस सोने के लिए, सोने की मूर्ति के लिए, किसी ने नहीं दिया। सुबह से हो गई शाम, बना नहीं है काम, लौटते हुए वापस निराश राज्य कर्मचारी सोने की मूर्ति को वापस ले आ रहे हैं। नदी का किनारा, दूर एक झोपड़ी, उस झोपड़ी में एक पंडित दरिद्र विप्र, उसने देखा दूर कोई स्वर्ण की मूर्ति लिए जा रहे हैं लोग, आवाज लग रही है, सोना ले लो बेटा दे दो, सोना ले लो बेटा दे दो, सोना ले लो बेटा दे दो। पंडित ने पूछा, ये स्वर्ण मूर्ति? राज्य कर्मचारियों ने कहा, बिल्कुल निग्गर सोने की है, ठोस सवा मन सोने की। ये नदी किनारे क्यों लिए फिरते हो? इसे बेचने के लिए राजा का आदेश है, मैं गरीब कैसे ले सकता हूं? ले सकते हो, क्या कोई बेटा है? पंडित बोला, गरीब ब्राह्मण हूं, गरीबी में आटा गीला होता है, 5-5 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा 12 वर्ष का है, क्या वही दे दो और मूर्ति ले लो? क्या करोगे? कि बलि दी जाएगी, यक्षिणी रुष्ट है ना। एक बार को झिझक गया पंडित, फिर सोचने लगा, 5 में से अगर 4 भी रह जाएंगे तो वंश का, कुल का तो नाम चला ही देंगे ना, एक बेटा दे ही दूं तो क्या बात है, सोना मिल जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी। बेटा दे दिया, छोटू बेटा दे दिया। बेटे ने कहा, पिताश्री मुझे क्यों दे रहे हो? ये बेटा, तेरी बहन की शादी हो जाएगी, तेरे भाइयों का उद्धार हो जाएगा, तेरी मां का उद्धार हो जाएगा। छोटा बेटा कहने लगा, पिता का ऋण होता है पुत्र पर, उसका उद्धार करने जा रहा हूँ बाबा, आपने कहा है तो लो चलो। एक बेटा शायद उस ऋण में से थोड़ा सा ऋण आज चुका दे। बेटा चला गया उस किले के छोर पर, एक किनारे पर ऊंची बुर्जी के साथ एक खंबे के किनारे पर बांध दिया गया बेटे को। यक्षिणी बुलाई गई, तिलक किया गया, उधर से राजा को कहा, महाराज दुर्ग का द्वार बनकर तैयार हो गया है, राजा चले आ रहे हैं। राजा को समझा कर बुलाया गया, राजा चले आ रहे हैं, दुर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। दुर्ग में जैसे ही प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े, एक बालक की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी, एक बालक की हंसी चारों तरफ गूंजने लगी, एक बालक की हंसी। हंसी एक बार गूंजी, दो बार गूंजी, तीन बार गूंजी, राजा पलट कर आ गया। मेरी बेइज्जती करते हो तुम, कौन हो? बालक को खड़ा देखा, बंधन युक्त। राजा ने पूछा, यह बालक क्यों हंसता है? बालक ने कहा, मैं हंसा हूं और हंसूंगा, मेरी हंसी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राजा तुम्हारे सामने बंधा हूँ, इस दुर्ग के द्वार के बराबर में बंधा हूँ, मैं हंसा हूँ, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार हंसाऊं। राजा बोले, क्यों? क्या तू ऐसे माता पिता का पुत्र है जो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता? कि नहीं राजा, मैं किसी से डरता नहीं, मान मर्यादा से नहीं डरता, और फिर मुझे किसकी इज्जत और कैसी इज्जत? तीन बार हंसाऊं बताता हूं उसका कारण। राजा ने पूछा, क्या? कि जब मेरी सामने से पहली बार तुम निकले तो मेरी पहली हंसी का कारण कि जब जीव जगत में पैदा होता है उसकी रक्षा करने वाले उसके माता पिता होते हैं जो उसे जन्म देते हैं। मैं एक ऐसा जीव हूँ जिसे जन्म देने वालों ने बेच दिया। मैं ऐसी बिक्री की चीज हूँ, मुझे अपने जन्मदाताओं पर हंसी आ रही है, मैं यूं हंसा हूँ। राजा ने पूछा, दूसरी हंसी राजन यूं के पैदा होने के बाद जीव समाज उसका संरक्षक होता है, समाज उसे सिखाता है, मैं ऐसी वस्तु हूं जिसे रक्षा करने वालों ने उसे रास्ता दिखाने वालों ने खरीद लिया, मुझे अपने आप पर और उन खरीदारों पर हंसी आ रही है। राजा, मैं क्यों डरूं किसी से, मुझे हंसी आती है, हंसूंगा, हंसता रहूंगा। राजा बोला, तीसरी हंसी हूं कि जिस समय जीव को कुछ पता चलता है कि संसार क्या है, समाज क्या है, तू रह कहां रहा है, तो उस समय उसका रक्षक शासक होता है। आज मेरा रक्षक स्वयं भक्षक बन गया है, तू शासक है और मेरी बलि चढ़ा रहा है इस मिथ्यास के लिए, इस झूठे पन के लिए कि तेरे दुर्ग के द्वार के लिए आज एक नन्ना बालक बलि दिया जा रहा है। राजा ने सोचा, देखा, बालक के कदमों में पड़ गया, नहीं तेरी बलि कोई नहीं देगा बेटा। उसके बंधनों को खोल दिया। रानी को किसने दी आज्ञा इस बालक को मारने की, किसने दी आज्ञा इस बालक को मारने की? रानी कदमों में पड़ गई, महामंत्री कदमों में पड़ गया, राजा रुष्ट थे, बालक के चरणों में पड़ गए। पुत्र, मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे दुर्ग का द्वार नहीं चाहिए, मुझे नगर नहीं चाहिए, तू मेरा पुत्र बन और मेरे साथ जो भी संपदा है वो तेरी है। बालक बोला, ये संपदा ये धन धरा का है, धरा में ही धरा रह जाएगा, जब मेरे अपने माता पिता ना हुए तो तुम मेरे क्या होगे, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ उस वन की ओर, उस मार्ग की ओर, उस रास्ते की ओर जा रहा हूँ जिस रास्ते पर मेरे जैसा बालक भगवान कुंद स्वामी गए थे, मैं तो उस खोज में जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये प्रश्न मेरे मन में है। राजन, ये राज तुम्हारा तुम संभालो, ये द्वार तुम्हारा तुम संभालो, मैं चला। राजा ने देखा, बच्चा बालक उस प्रवेश द्वार की सीढ़ियों से उतरा हुआ चला जा रहा था। राजा ने उसी समय अपने वस्त्र आभूषणों को त्याग दिया, राजा भी उसी समय पीछे पीछे चलने लगा। महारानी कदमों में गिर गई, राजन मुझसे हो गई गलती, इस बालक को आपकी आज्ञा बिना मैं इसकी गर्दन काटने के लिए ले आई, उस यक्षिणी के चक्कर में आ गई। राजन, महाबली मंत्री चरणों में गिर गया, प्रभु ये सारा अनिष्ट मैंने किया है। राजन बोले, मुझे किसी से कोई विद्वेष नहीं है, मैं किसी से कोई दुर्भावना नहीं रखता हूँ, मेरा अंत में कहना है ये राज ये रजवाड़े किसी के साथ नहीं जाएंगे, लो तुमने तुम्हारा साथ जो तुमने किया तुम्हारा तुम्हें अंत में क्षमा करता हूँ, यही है तुम्हारा प्रायश्चित करने का मौका, किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। चल दिए राजा, उसी ओर चले जा रहे हैं।